ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्ट की। श्रीमद्भागवतम स्कंद 5 अध्याय 26 एवं श्लोक संख्या 27, कैंटो 5 चैप्टर 26 टेक्स्ट नंबर 27। ये त्विह वे दश्यद अग्निदा गरदा ग्रामान सार्थान वा विलुम्पन्ति राजान राजभटा वा तान च अपि हि परित्य यमदूता वज्रदृष्टा श्वान सप्तशतानि विंशति च सर्वशं खादन्ति।
इसको पढ़ सकते हैं?
तो अनुवाद और तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा, ये जो व्यक्ति, गिने चुने लोगों, थोड़ा जोर से बोलो, ये जो व्यक्ति, तू लेकिन यह इस जीवन में, वे निसंदेह दस्यद चोर तथा डाकू, अग्निदा आग लगाने वाले, गरदा विष पिलाने वाले, ग्रामान गांवों को, सार्थान वणिक वर्ग को, वा अथवा विलोमपंथी लूटते हैं, राजान राजा राजभटा अधिकारी जन वा अधिकारी जन वा अथवा तान उनको च भी अपि निसंदेह ही निश्चय ही परित्य मरने पर यमदूता यमराज के दूतगण वज्रदंष्टा बलशाली दांतों वाले श्वान कुत्ते सप्तशतानी 720 च और सर्वसम भुक्कड़तापूर्वक खादन्ति निगल जाते हैं। तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं, पहले अनुवाद, इस जगत में कुछ लोगों का व्यवसाय ही लूटपाट करना है, और जो अन्यों के घरों में आग लगाने और उन्हें बिष देते हैं, यही नहीं, राज्य अधिकारी कभी कभी वर्णिक जनों का आयकर अदा करने के बहाने तथा अन्य विधियों से उत्पीड़न करते हैं। मृत्यु के पश्चात ऐसे असुरों को शार्मे यादन नामक नरक में रखा जाता है। उस नरक में 720 कुत्ते हैं जिनके दांत वज्र के समान कठोर हैं। ये कुत्ते यमराज के दूतों के आदेश पर ऐसे पापी जनों को भुकुटता पूर्वक निकल जाते हैं।
आप दोहराइएगा,
इस जगत में कुछ लोगों का व्यवसाय ही लूटपाट करना है और जो अन्यों के घरों में आग लगाते और उन्हें विष देते हैं। यही नहीं, राज्य अधिकारी कभी कभी वाणिज्य जनों का आयकर अदा करने के बहाने अन्य विधियों से उत्पीड़न करते हैं। मृत्यु के पश्चात ऐसे असुरों को शार्मेदन नामक नरक में रखा जाता है। उस नरक में 720 कुत्ते हैं जिनके दांत वज्र के समान कठोर हैं। ये कुत्ते यमराज के दूतों के आदेश पर ऐसे भूखे लोगों को, भूखे जनों को, पापी जनों को भुक्कड़ता पूर्वक खा जाते हैं, निकल जाते हैं। तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में यह कहा गया है कि इस कलि काल में प्रत्येक व्यक्ति तीन प्रकार की विपत्तियों से पीड़ित रहेगा, अति वर्षा, दुर्भिक्ष और राज्य द्वारा अधिक कर। क्योंकि मनुष्य अधिकारिक पापी होते जा रहे हैं, इससे वर्षा का अभाव होगा जिससे कम अन्न उपजेगा। लोगों को कष्ट कम करने के बहाने सरकार व्यवसायी वर्ग पर विशेष रूप से भारी भरकम कर लगाएगी। इस श्लोक में कहा गया है कि ऐसी सरकार के अधिकारी दस्यु अथवा चोर होते हैं। इनका मुख्य काम होगा लोगों की संपत्ति लूटना, चाहे वो राजमार्ग का लुटेरा हो या राजकीय चोर। ऐसे व्यक्ति को अगले जीवन में शार्मे यादन नामक नरक में गिराकर दंडित किया जाएगा, जहां उसे नृशंस कुत्ते काटेंगे। ओम ज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति सपदंतिकम्। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। यं पव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति धनमयतया तरमो अभिनेतुस्तं सर्वभूतहृदयं निमानतोऽस्मि। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमं विश्वपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण। नारकी लोगों का वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं। 28 तरह के नरकों का वर्णन है, वैसे 21 तरह के नरकों का वर्णन है, 8 नरक बाद में फिर बताए, इसे 28 हुए। हम एक दूसरे को गाली देते हैं कि नरक में जाएगा, देते ना, पहले हम भी देते थे नरक में जाएगा ऐसा करेगा, तो हम लोगों को एक ही नरक होगा ऐसा। लेकिन जब भागवत पढ़ते हैं तो 28 तरह के नरकों का, चेतो हरा युवतों सुहृदो नकुला सदबांधवा प्रणयन भृगरस्य वृत्या गर्जन्ति दन्ति निवास्तुरलास्तुरंगा सम्मीलने नयन यो नहि किंचिदस्ति। इधर से शुरुआत करता हूं, फिर धीरे धीरे श्लोक पर। महाराज भोज एक बड़े प्रतापी सम्राट हुए हमारे देश में। तो एक बार एक श्लोक लिख रहे थे, उनको श्लोक विद्वानों की संतों की सभा में बैठने का बहुत शौक था, तो खुद भी श्लोकों की रचना करते। तो महल में जिस कमरे में सोए थे और अपनी पलंग पर बैठे रात को श्लोक लिख रहे हैं, और श्लोक जिस पलंग पर लिख रहे थे पलंग के नीचे एक चोर छुपा हुआ था रात को, तो श्लोक लिख रहे हैं, चेतो हरा युवतों सुहृदो नकुला। अपने राज्य का वर्णन कर रहे हैं कि मैं कितना अच्छा राजा हूं, कि मेरे राज्य में मेरे देश में कितनी सुंदर सुंदर स्त्रियां रहती हैं जो चित्त का हरण करती हैं। चेतो हरा युवत सुहृदो अनुकूला, जो अनुकूल हैं हमारे। सदबांधवा प्रणयन भृगरस्य वृत्या, मेरे बंधु बांधव रिश्तेदार मेरे परिवार के लोग कितने अच्छे हैं, मेरे दुख सुख का ध्यान रखते हैं। दूसरे श्लोक में लिखा, गर्जंती दंती निवहास्तुर अलास्तुरंगा, मेरा ड्राइवर कितना अच्छा है, उस समय हाथी होते थे तो महावत, तो इस समय के उस समय का महात्मा तभी का ड्राइवर, हाथी मत आज की गाड़ी। मेरा ड्राइवर कितना अच्छा है, मेरे महल से बाहर आने से पहले गाड़ी का एसी तैयार करके रखता है। अब तीन लाइन लिखी तो चौथी लाइन क्या लिखूं ये समझ में नहीं आता। तो रात भर सोचते सोचते सुबह ब्रह्म मुहूर्त हो गया, 4 बज गया, और ये चोर भी खटिया के नीचे छिपा हुआ। अब चोर इंतजार करता है कि कब राजा सोए तो मैं माल साफ करूं, हाथ साफ करूं कुछ, और राजा सोता नहीं। तो चोर ने विचार किया, आज की रात हमारी बेकार चलेगी, कुछ हाथ नहीं लगा। तो चोर ने विचार किया, देखा जाएगा। चोर विद्वान था बहुत, तो राजा बार बार सोच रहे थे, चेतो हरा युवत सुहृदनो किला सद बांधवा प्रणयन भृगरस्य वृत्या गर्जन्ति दंत निवास तो रलास्तो रंगा, फिर अटक जाते। तो चोर ने खटिया के नीचे से कहा, लिखो महाराज, सम्मीलने नयन यौन ही किंचित अस्ति। तो 4 चरण में श्लोक पूरा हो गया। चौथे चरण का अर्थ इस श्लोक में है कि चोर ने कहा कि आपने जो 3 लाइन रात भर लिखी, इसमें आपने अपने राज्य का, अपने वैभव का बखान किया, अपने सुख का। श्री राधा राजबिहारी ललिता विशाखा जी की, सीता राम भक्त हनुमान भगवान की, गौनिताय भगवान की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। अब चौथे चरण में ये लिखो कि जो तीन चरण में आपने लिखा है, मेरा ये है, मेरे बांधव ऐसे हैं, हमारे यहां की स्त्रियां ऐसी हैं, तो सम्मिलन नयन यौन, जब आपकी आंख बंद हो जाएगी तो सब इधर का धरा रह जाएगा, ऐसा लिखो। तो चोर विद्वान था, उसने अच्छी लाइन बताई, तो राजा बहुत प्रसन्न हुए और उसको बहुत दान देकर के विदा किया कि हमारा श्लोक तुमने पूरा कर दिया सुप्रसिद्ध। तो संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं सब नाशवान हैं, सब बताया। नरक में भी व्यक्ति क्यों जाता है? कोई भी व्यक्ति पाप करना नहीं चाहता, गीता में भगवान कहते हैं, अर्थ के न प्रयुक्तो यं पापम चरति पुरुष अनिच्छन अपि वासनेय बलादिवो नियोजित। हे प्रभु, कोई भी व्यक्ति पाप करना नहीं चाहता है, चोर चोरी करना चाहता है, रात भर बैठे रहो, कब लोग सोएंगे, कब मैं दूसरे की आंख बचा करके, दूसरे को अनदेखा करके कि मैं हाथ माल साफ करूंगा, ऐसा कोई चाहता है? मजबूरी है, पैसा नहीं है, बेरोजगारी होगी, गरीबी होगी, कुछ न कुछ मजबूरी व्यक्ति की होती है, अपराध करने बढ़ जाता है। अनिच्छन भी बात है, वो न चाहते हुए भी बलादिव नियोजित, कौन सा ऐसा बल है जो व्यक्ति को गलत काम करने के लिए प्रेरित करता है? तब भगवान कहते हैं, कामेश क्रोध एश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्ये न मे वैरिणम काम। और जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो व्यक्ति को क्रोध आता है, और क्रोध से रजोगुण समुद्भव, फिर महाशनो महापापम, फिर महासंग्राम विश्व युद्ध शुरू हो जाता। शुरुआत कहां से हुई? छोटे से काम से। इसलिए नरकों में भी नरकों की व्यवस्था क्यों की गई? क्योंकि हम भगवान के आदेशों का, उनकी शिक्षाओं का पालन नहीं करते। भगवान गीता में कहते हैं, इसे नरक का महापुरुषों ने अर्थ लगाया है, धोबी घाट। जैसे कोई कपड़ा हम अपने बाथरूम में धोते हैं, रगड़ने पर भी दाग नहीं मिटता, तो फिर क्या बोलते हैं? ड्राई क्लीनर को दे दो। वो लोग पेट्रोल डीजल डाल के धुलाई करके। इसलिए पाप तो हम करते हैं, लेकिन उनका शमन का उपाय नहीं है, सफाई का उपाय नहीं करते। और बाद में जैसे कपड़ा बहुत मैला हो जाए और उसका दाग ना निकले, तो हम ड्राई क्लीनिंग या धोबी घाट वाले को, जो ड्राई क्लीनर लोग हैं वो कपड़ा साफ थोड़ी करते हैं। अभी जो हम आप ड्राई क्लीनिंग वाले के पास सूट लेके गए, वो भी सूट पहन के बैठा है, हमारा कपड़ा धोता है, और रसीद फाड़ के दे दिया, पैसा ले लो। धोबी लोग कपड़ा धोते हैं, वो दुकान में थोड़ी बैठते हैं। महालक्ष्मी में जाओ धोबी घाट देखना है तो बॉम्बे सेंट्रल जब जाते हैं, और धोबी लोग क्या करते हैं, कपड़े क्या सब पटकते हैं पत्थर पे, तड़क तड़क, और जो दाग दाग क्या, कपड़े की खाल निकल जाती है, दाग क्या है, जब कपड़ा ही नहीं रहेगा तो दाग कहां से रहेगा। तो जो व्यक्ति अपने घर में ऐसा कोई उपाय नहीं करता, जैसे हम कपड़े का ध्यान नहीं रखेंगे दाग लगेगा, ज्यादा मैला हो जाएगा, तो ऐसे हम अपने कर्मों का ध्यान नहीं रखेंगे तो कर्म एक बार बहुत खराब हो जाते हैं, और इतने खराब हो जाते हैं कि इनकी सफाई का कोई उपाय नहीं, सीधे नरक भेजना पड़ता है। और इसलिए 28 तरह के नरकों का वर्णन किया। तो सारमेद कौन सा नरक है? सारमेदाय नरक इसका नाम है। ये नरक किन लोगों को मिलता है? जो लोग लूटपाट करते हैं, दूसरे के घरों में आग लगाते हैं और उन्हें विष देते हैं। आग लगाने मतलब माचिस की तीली जलाना नहीं है, दूसरे के घर में झगड़े करवा देना। अभी आप आजकल पॉलिटिकल राजनीतिक जीवन में भी देखते हैं, दिन भर क्या काम है, इधर क्या उधर। कोई कहे हमारा लड़का बहुत बड़ा मिनिस्टर है, क्या करता है, इधर क्या उधर। व्यक्ति को देखो, अभी हम अपने मंदिर में बैठे हैं, हम बाहर तो ऐसा भाषण नहीं देते हैं क्योंकि कभी कभी पकड़ने की भी नौबत आती है। तो अभी अपने मंदिर में ही है तो कोई बाहर का आदमी नहीं है, तो सही बात हम बताते हैं। अब कोई कहे हम सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, क्या करते हो भाई तुम। कोई कहे हम सुप्रीम कोर्ट में जज है, मेरा लड़का मेरा पति, काम क्या करते हो दिन भर बताओ ना। दिन भर दूसरे की बुराई सुनना, दो वकील गिरोह करेंगे, वो उसकी बुराई करेगा वो उसकी बुराई, तो उन बुराइयों के ऊपर हमको डिसीजन देना है। दिन भर बुराइयां सुन, दिन भर मतलब फिर जिंदगी भर 60 साल जब तक रिटायर नहीं हुए बुराइयां, फिर हमारा बुराई सुनने में एक अच्छा रिकॉर्ड हो गया, उसमें हम डिसीजन देने में एक्सपर्ट हो गए, फिर किसी न्यायिक कमेटी का हमको चीफ बना देंगे बाद रिटायरमेंट के बाद, पूरा जीवन हमारा ऐसे ही चला जाता। एक डॉक्टर है फेमस, क्या करते हैं, दिन भर लोगों का शरीर चेक करना, चमड़ी पेट दिखाओ, या ऊपर करो कुर्ता, टोपी निकालो, हमारे तो टोपी नहीं है, क्या काम है। हम वकील हैं, क्या काम है, दिन भर कौन आएगा, कौन आएगा तुम्हारे पास, क्या फूल बेचने वाले आएगा, या कोई जब करने वाला आएगा, जिससे घर में गर्दिश आई होगी वही आएगा, जिससे घर में झगड़े होंगे प्रॉपर्टी के लफड़े होंगे वही हमारे दरवाजे पर आएगा। और फिर हम लोग भजन भी करते हैं, और भजन में प्रार्थना क्या है, यही जो व्यक्ति, अब कोई राजकर्मचारी कोई बड़ा पदाधिकारी सुबह सुबह भगवान का भजन करे, वो क्या भजन करेगा, सब सुख शांति रहे, उसको अपना जॉब देखना है। एक बार हम बॉम्बे में पहली बार आए थे तो एक टीसी ने हमको पकड़ दिया। मैं दिल्ली में जब पहली बार आया था तो दिल्ली में बहुत ठंड थी, हम कोट पहन के आए थे वहां से, तो जब मैं बॉम्बे में आया तो मैंने कोट उतारा नहीं, यहां बहुत गर्मी हुई थी तो मैंने भी काला कोट पहन रखा था। तो हम लोकल ट्रेन में चढ़ गए तो हमको तो मालूम नहीं फर्स्ट क्लास क्या, 84-85 की बात है, तो शायद हम फर्स्ट क्लास में घुस गए कोट पहन के। तो कुछ स्टेशनों तक तो हमको पकड़ा नहीं, दूसरा टीसी समझा कि हम भी टीसी हैं, काला कोट था हमारा, तो जो डिब्बे में हम जाए उस डिब्बे में टीसी आया ही नहीं, वो समझे कि कोई टीसी गया है ऑलरेडी वहां चेक करने। तो बाद में हमको एक स्टेशन पे एक टीसी ने पकड़ लिया, तो उन्होंने कहा कोट, हमने कहा अभी अभी हम दिल्ली से आए तो हमें मालूम नहीं क्या, तो बोला फाइन भरो। तो हमने कहा हम गलती से, और टिकट हमारे पास दिल्ली से बॉम्बे का है, उसने कहा नहीं नहीं लोकल का टिकट अलग लेना पड़ेगा। तो ऐसे हमने उससे बात की, वो तो टीसी बोला हमको कोटा दिया जाता है रोज का कि आपको आज इतने लोगों को पकड़ना है, इतना पैसा आपको लाना है, कहीं से भी लाओ, चाहे तुम जबरदस्ती किसी को पकड़ो जबरदस्ती फंसाओ, लेकिन इतनी रसीदात कटनी चाहिए। टीसी बोला अब बताओ, सुबह सुबह भगवान के मंदिर में प्रार्थना करेगा, क्या प्रार्थना करेगा, कोई सब टिकट लेके जाए ऐसा प्रार्थना करेगा, वो तो यही प्रार्थना करेगा कोई दो चार लोग विदाउट टिकट मिल जाए, मेरे को फंस जाए। डॉक्टर प्रार्थना करेगा दो चार बीमार हो जाए हमारे यहां आ जाए, वकील प्रार्थना करेगा दो चारों के यहां लफड़ा हो जाए हमारे यहां आ जाए, इंजीनियर प्रार्थना करेगा किसी की मशीन खराब हो जाए हमारे यहां आ जाए। अरे अगर कुपर हॉस्पिटल के बाहर जो कफन बेचता है वो सुबह सुबह अगरबत्ती घुमाए प्रार्थना करे सब अमर हो जाएं, तो क्या कफन अपने ऊपर डालेगा वो। तो इस संसार में जितने भी कर्म, ये रोजी रोटी रोटी कपड़ा और मकान के लिए हम करते हैं, दूसरे का अहित इसमें छुपा हुआ है, और यही अहित हमारे नरक में जाने का कारण है। कोई बिरला पुरुष ऐसे होंगे। व्यापारी वर्ग में ही देखिए एक दूसरे के प्रति कितना कंपटीशन है, वो उसको डाउन करना चाहता है, वो उसको डाउन, मैं इतने में दे दूंगा। यही नहीं, राज्य अधिकारी कभी कभी वणिक जनों का आयकर अदा करने के बहाने अन्य विधियों से उत्पीड़न करते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, देखो भागवत में भी इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट का नाम है, तो इनका कल्याण ऐसे ही हो जाएगा। इनकम टैक्स आप भरते हैं कई लोग, और कई लोग पकड़े जाते हैं, 1 करोड़ पनिशमेंट। तो बीच में कोई मध्यस्थ है, 50 लाख में काम हो जाएगा, 50 दे दीजिए अधिकारियों को। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं भागवत में, तो आपके रसीद, बिना रसीद के आप पैसा दे दीजिए और जो भी दोष है आपका सब माफ हो गया। एक बार श्री प्रभुपाद जी ने कई तात्पर्य में कोट किया है कि जो प्रशासनिक वर्ग है, अभी हो सकता है मंदिर में कोई लोग दर्शन करने आए हों, बाद में बात कर लेना, प्रशासनिक अधिकारी का कभी कल्याण नहीं होता है। कोई कहे हम बहुत बड़े उच्च पदाधिकारी हैं, प्रभावशाली हैं, कभी कल्याण नहीं, क्योंकि पूरे जीवन भर पाप करना है अपने को, पाप। अभी कल एक रिपोर्ट आई है न्यूज़पेपर में, आपने देखा है, कोई पुलिस का चीफ जो जेल में बंद है गुजरात में, चिट्ठी लिखी है उसने कि बड़े लोग, हम करना नहीं चाहते लेकिन बड़े लोग हमको आदेश देते हैं गलत काम करो। अभी 2-3 दिन से आप न्यूज सुन रहे होंगे, तो आप नहीं भी करना चाहते तो आपको करना पड़ेगा, आपको ऊपर से आदेश होगा, ये काम करना पड़ेगा, नौकरी पर रहना है तो करना है आपको, तो किसी भी तरह से आप अपराध करने से नहीं बच सकते। बहुत कम लोग ऐसे हुए हैं, बहुत कम लोग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब वकालत करते, प्रेसिडेंट नहीं थे वो भारत के, तो उनके पास एक बार एक ग्रस्त व्यक्ति आया, तो उसकी चाची की औलाद नहीं थी, तो उसने कहा कि हमारी चाची की प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दीजिए, सिविल केस था एक। तो राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा नहीं नहीं, जिन बच्चों के, जिन माता पिता के औलाद नहीं है उनकी संपत्ति या तो धार्मिक ट्रस्ट को जानी चाहिए धर्म के कामों में, और या राजकीय कोष में जाना चाहिए, राष्ट्र संपत्ति घोषित करना चाहिए। तो आप किसी, जिन लोगों की औलाद नहीं है, आप भले ही वो आपका सगा है लेकिन आप उनकी भूमि का, उनकी संपत्ति का भोग नहीं कर सकते। और अगर मेरे कहने पर आप नहीं मानते हैं, आपको करना ही है, तो आप दूसरे वकील के पास जाइए, मैं ये काम नहीं करता हूं। राजेंद्र प्रसाद जी भौतिक जीवन में भी जो भौतिक लोग हैं उनकी भी कुछ, धार्मिक स्थल में कई पदा एकाध कोई मिलेगा ऐसा, लेकिन ज्यादातर ऐसा ही है। इसलिए प्रशासनिक वर्ग को अगर इसमें नरक नहीं जाना पड़ता तो सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी राजा की नौकरी क्यों छोड़ते बताइए, वो भी तो मुख्यमंत्री थे ना। शाह के दरबार में बंगाल में कितना बड़ा प्रधानमंत्री का पद था सनातन गोस्वामी के पास, और राजा ने उनसे कहा भी इधर ही भजन करो, कहा नहीं कहा, क्योंकि उनको मालूम है भजन क्यों दूसरा करना पड़ेगा कुछ भजन के नाम पर। जितने राजा महाराजा हुए भागवत में, भरत महाराज, अंबरीश महाराज, ध्रुव महाराज, जितने भी महाराज लोगों की कथाएं हैं, मनु महाराज, इन लोगों ने राजपाट छोड़ करके तपस्या की है, जबकि इनके घर का माहौल भी ऐसा था कि घर में बैठ के भजन कर सकते थे, लेकिन पाप करना पड़ेगा इनके, इन पर कारण कैसे भी, इसलिए ये सब त्याग करके भजन किए। इसे किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को, ये डिपेंड करता है उसकी पत्नी के ऊपर। देखो प्रशासनिक अधिकारी भी घूस लेते हैं, किस लिए? क्योंकि पत्नी की डिमांड ज्यादा है, ये लाओ वो लाओ, फलाने ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, तो पति फिर जोश में आ जाता है, मैं कम हूं। पत्नी को अपने पति को पूछना चाहिए, पतिदेव आपकी तनख्वाह 20,000 है, लेकिन इस बार आप 50,000 का माल घर में लाए, 30,000 कहां से आए, हिसाब तो पूछो। तो कोई बिरला पत्नी ऐसी होगी, कई दफे कोई लोग खाली बोल भी देते हैं, हम नमक में रोटी खा लेंगे, गलत काम मत करना, लेकिन खाएंगे रोज शाही पनीर, खाली मुंह से बोल दिया। आज की स्थिति क्या है देखिए, अगर आप ईमानदारी से पैसा कमाएं तो दाल रोटी भी नहीं खा सकते आप, इतनी महंगाई है बाहर। इतनी महंगाई में भी आप होटलों में बियर बार में बैठे हैं, इसका मतलब अनाप शनाप कमाई है ना। ये नेचुरल वाले की आइसक्रीम खाने नेपेंसी रोड से आते हैं, वो ईमानदार लोग आते हैं नेपेंसी रोड मालाबार रोड से, रात को आप 11-12 बजे जाइए नेचुरल आइसक्रीम वाले के पास। हम यहां करीब 20-22 साल पहले थोड़ा सा खुमचा इसने खोला था यहां पर, नेचुरल वाला है, अभी 300-400 दुकान है इंडिया में इसका, किधर से आ गया। ये सब मालाबार नेपेंसी रोड के जितने भी नेपेंसी रोड मालाबार में कौन रहते हैं, ये सब इनकम टैक्स कमिश्नर उधर ही रहते हैं। जितने भी प्रशासनिक अधिकारियों को रूम मिले हैं सब नेपेंसी रोड और मालाबार और बेडर रोड। आप 11-11:30 बजे जाना, जितनी भी गाड़ियां खड़ी रहेंगी आप पूछना कहां से आए, बोला नेपेंसी रोड से। किधर से आए, नवालावाड। किस लिए, सिर्फ आइसक्रीम खाने के। ये ईमानदार आदमी के काम है, कोई आदमी ईमानदारी से सिर्फ अपनी तनख्वाह पर गुजारा करे और उसका लड़का नेपेंसी रोड से आइसक्रीम खाने आएगा, मंदिर नहीं आएगा हो लेकिन आइसक्रीम खाने जरूर आएगा, लेकिन इसका भुगतान करना पड़ेगा, बच्चों को करना पड़ेगा। देखो आज 6 महीने के बच्चों को कैंसर है, क्या बच्चे ने कभी नशा किया, उसके बाप का बुरा कर्म वो भुगत रहा है। हॉस्पिटल में जाइए 6 महीने साल भर के बच्चों को ब्लड कैंसर, ऐसी ऐसी बीमारियां जिनमें ये कहा जाता है कि ये शराब पीने से हुई है, वो 6 महीने के बच्चे ने कब शराब पिया, 6 महीने के बच्चे ने कब तंबाकू खाया, उसका बाप दादा तंबाकू खाया भुगत रहा है, नाती खून वही है ना। तो लोगों का खून चूस करके नेचुरल आइसक्रीम खाएंगे तो हमारे का पोता सुखी रहेगा। लाल बहादुर शास्त्री, उनके लड़के ने एक बार कहा स्कूल में फीस भरनी है, प्रधानमंत्री थे हो तो कहा बेटा अभी तनख्वाह नहीं मिली, तनख्वाह मिलेगी फिर बाद में फीस भरेंगे, ऐसा। एक बार साड़ी के शोरूम में उद्घाटन करने गए थे तो एक साड़ी वाले ने बहुत सारी साड़ियां उनको दी, तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा अगर हम प्रधानमंत्री नहीं होते फिर भी हमको साड़ियां देते। उन लोगों को साड़ियां दो जिनके घर में साड़ी नहीं है, हम प्रधानमंत्री हैं उद्घाटन करने आ गए, थोड़ा प्रभाव में हमको साड़ी दे रहा है बिना मांगे। ये सब बातें भागवत में, सब बात भागवत में आयकर भवन लिखने की क्या जरूरत है सुखदेव गोस्वामी को। ये देखो वणिक जनों का आयकर अदा करने के बहाने, इसका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी वर्णन है। तो ये सब बेसिक चीजें हैं, नर्सरी में जो पढ़ाया जाता है ABCD वो है। भजन तो बहुत ऊपर है, भजन कहां हो पाएगा अभी, अभी तो सिर्फ मंजन के चक्कर में घूम रहे हैं, भंजन कहां हो। इससे शारमे दान नरक में इनको जाना पड़ेगा, 720 कुत्ते वहां हैं, और कुत्ते कैसे हैं, झपट मारते नरक में कैसी धुलाई होती है, अजामिल प्रकरण में इसमें भी वर्णन है, एक एक नरक का पड़ी है। इधर हम किसी व्यक्ति को पिटाई करें तो पीट पीट के मर सकता है, लेकिन वहां मरता नहीं क्योंकि प्राण यमदूतों के हाथ में होते हैं, खूब धुलाई। अगर किसी ने कह दिया मेरे बाप कमिश्नर है, पूरा दांत तोड़ देते हैं आगे का। अगर जान पहचान लगाई, मेरा ये है वो है, फलाने को फोन करूंगा, पूरा कान ही उधेड़ के हाथ में दे देंगे। पढ़िए एक एक नरक में कैसा हाल करते। इसलिए अगर धोबी घाट के पत्थरों में अपनी कुटाई नहीं करनी है तो परीक्षित महाराज ने पूछा सुखदेव गोस्वामी से, और कोई उपाय है कि धोबी घाट के पत्थरों में पिटना न पड़े, खाल न निकल जाए? और कोई दूसरा उपाय है कि पाप कर्मों से शमन हो? तब पंचम स्कंद के बाद छठे स्कंद में अजामिल प्रकरण की कथा बताई, नाम की महिमा बताई। अजामिल प्रकरण से इसलिए सुनाया कि नाम के माध्यम से जीव धोबी घाट इन 28 तरह के नरकों में जाने से बच सकता है और अपने घर में भजन करे, साधु संग करे। साधु लोग घर में आए उनका सम्मान करें, परीक्षित महाराज के यहां गए सुखदेव गोस्वामी, स्वागत किया, आज धन्य हो गया मेरा घर, धन्य हो गया, कहते हैं परीक्षित महाराज। तो ऐसे कोई साधु पुरुष घर में आए, दानार्थिनो मधुकरा यदि कर्ण ताले दूरी कृता करिवरण मदंद बुद्धया तस्यैव गंड युग मंडल हानिरेशो मृगान पुनर्विकच बदू भवने बसंती। आजकल आप किसी के यहां प्रचार करने जाइए, बहुत कम लोग आपको मिलेंगे। आइए आइए बैठिए। और कई लोग तो ऐसा समझते हैं हमारे घर इसलिए आए कि मैं बड़ा योग्य हूं। कई लोगों को ये घमंड भी है, हमारे यहां साधु आते हैं, बड़े बड़े विद्वान आते हैं, किसी को बोलो कुछ करो, भजन करो, कुछ करते हो? नहीं करते, सब करते हैं, बड़े बड़े महाराज। बड़े बड़े महाराज कौन? देख रहे हैं आप, 3 दिन से जेल में पड़े हैं वो महाराज, बड़े बड़े महाराज। 2 लाख आदमी कथा में आते हैं, 3 लाख, और लाखों के चक्कर से सलाखों के अंदर चले गए, ऐसे महाराज। क्यों? देखिए, भक्ति 9 प्रकार की है, श्रवणम कीर्तनम विश्व श्रवणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। लेकिन कथा अगर भगवत प्रेम के लिए सुनी जाए, प्रथम भगति संतन कर संगा, लेकिन दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कथा में रति तो है नहीं, खाली फोटो खिंचाने के लिए। गोस्वामी जी बात क्यों करते हैं? दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, यही दूसरी भक्ति है। लेकिन ये रति कथा प्रसंगा कब आएगी? जब प्रथम भक्ति संतन कर संगा श्रवणम, तब कीर्तनम विष्णु कथा रति कथा प्रसंग। कथा में रति है नहीं और साधु संग कर लिया फोटो खिंचाने के लिए, कोई मतलब है इसका? बड़े बड़े महाराज, ये भी भगवान की, देखिए भारतवर्ष पर भगवान की कितनी बड़ी कृपा है, नहीं तो आजकल पकड़े कहां जाते हैं। ये इतना, ये भगवान की कृपा हमारे देश के ऊपर है, उन लोगों के ऊपर है जो पदभ्रष्ट हो रहे हैं। मैं भगवान हूं, अपनी फोटो को भोग लगाना है? मैं परसों कमोटे गया था, खारघर के पास एक कोई कथा का ग्राउंड देखने गया था, इतना बड़ा फोटो रखा है। अरे मैंने कहा तुम्हारा गुरु तो उधर चाय भी नहीं मिल रही है उसको, तुम इधर क्या भोग लगा रहा है इसको? फोटो के आगे काजू किशमिश ड्राई फ्रूट रखा था। तो हमने कहा ये तो उधर हालत खराब है, उधर ड्राई फ्रूट किसको खिला रहे हो? खिला रहे हैं तो 5 करोड़ आदमी, रिकॉर्डिंग तो नहीं होगी ना इसका, 5 करोड़ आदमी चक्कर में पड़ गया बताओ। भजन में आते, कीर्तन करते, हरि नाम लेते, किसी अच्छे सनातनी वैष्णव का संग करते, कितना अच्छा होता। भगवान भगवान रघुपति राघव राजा राम पतित पावन आशा राम, कितनी बार हम कहते हैं आशा राम नहीं सीता राम होता है। तुलसीदास जी से गलती हो गई थी इसलिए संशोधन कर दिया, पतित पावन सीताराम नहीं हुआ, अब बोलो पतित पावन आशाराम। हमको डर नहीं, प्रचार करना है तो अब डर का है कर, लेकिन गलत बात, एकदम गलत बात। इसलिए कोई भी साधु संत सनातनी वैष्णव घर में आए बैठाइए, पूछे उससे क्या चावल क्या भाव है, ये भगवान कैसे मिलेंगे, कैसे सुखी होंगे। साधु संत घर में आते उनके साथ भी राजनीतिक चर्चा, सोशल डिस्कशन, कैसे भगवान मिलेंगे, कैसे सुख शांति आएगी। और भक्त भी ऐसा होना चाहिए जो सुख शांति की बात करे। नरक में जाने का कारण और है, देखिए जिन पाप कर्मों का हम पैसा खाते हैं वो लोग भजन करते नहीं। हम खाली भारत की बात, भारत में जितने बड़े बड़े दानी हैं क्या भजन करते हैं? कई दफे तो ऐसे भी लोग देखे गए हैं जो करोड़ों रुपया कंपनी से कमाते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री अपना बिजनेस करके अपने वर्करों का शोषण करते हैं, उनकी पगार नहीं देते लोग, मिलावटी माल बेचते हैं और फिर मंदिर निर्माण करवाते हैं। और ऐसे मंदिर में जो भक्त बैठेगा उसमें भगवत भक्ति आएगी या ये सब काम वासनाएं आएंगी? ऐसे भी लोगों की लिस्ट है, हमारे पास भी है, देख लेना, करोड़ों रुपया दान करते हैं लेकिन उधर शोषण करते हैं, चोर बाजारी, चाहे टैक्स से बचा के, वर्करों की तनख्वाह न दे करके, उनकी पगार न बढ़ा करके, या डुप्लीकेट माल बेच करके, और तिरुपति जाके यही प्रार्थना भगवान से करना, इस बार का लॉट अगर निकल गया डुप्लीकेट वाला 50% आपको दूंगा। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरुमे देव, नकली माल अगर पास हो गया निर्विघ्न सर्व कार्येषु सर्वदा, गणपति महाराज गणपति आने वाला है मैं गणपति बिठाऊंगा। क्या भक्ति भाव से थोड़ी बिठाएंगे गणपति? कोई नंबर दो का माल अच्छी तरह से बिना विघ्न के बिना चेकिंग के और हो गया पास और पैसा अपने पास आ गया, फिर देखो अच्छे से अच्छा गणपति शेषनाग वाला गणपति बिठाऊंगा। आप भगवान नहीं भी हो आपको मैं विष्णु भगवान बना के बिठाऊंगा, लेकिन निर्विघ्न कुरुमे देव सब कार्य से सर्वदा। इसलिए इन सब से बचने का एक ही उपाय है, भगवान का भजन। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गति रन्यथा। भगवान का नाम योन्त प्रवेश मम वाच मीमां प्रसुप्तां संजीवयस किल शक्ति घर स्वधामना। ध्रुव महाराज कहते हैं अन्यास हस्त चरण श्रवणत्व गादिन प्राणात्रयो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे भगवान, आपका स्मरण चिंतन जब आपकी वाणी आपका विग्रह दर्शन ये सब चिंतन मेरे शरीर में प्रवेश करता है तो मेरे शरीर में चेतना आ जाती है, मेरे हाथ पांव मुंह कान आंख हम एक दूसरे को देख रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं एक दूसरे की बातों को, किसकी कृपा से? ध्रुव महाराज कहते हैं आपकी कृपा से भगवान। अगर आप चेतना न दें, आप ऊर्जा न दें, तो मनुष्य मृतक समान है। इसलिए भगवान का नाम। किरात होणांध्र पुलंद पुलकसा आवीर गंगा यमुना खसा दया अन्येच पापा है यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मे प्रभु विष्णुवे नमः। कल हेमगिरी प्रभु पढ़े थे श्लोक महाराज की व्यास पूजा में। किरात होणांध्र पुलंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसा दया। सुखदेव गोस्वामी द्वितीय स्कंद में जब वंदन करते हैं भगवान का, उसमें श्लोक भगवान का नाम होण पुलिंद पुलकस खस यवन सबका कल्याण करता है। जो पापों के मूर्तिमान स्वरूप हैं, अन्येच पापा यदुपाश्रयाश्रय, जो पाप का मूर्तिमान स्वरूप हो गए हैं, पापा हो गए हैं, उनका भी कल्याण करते हैं। यदुपाश्रयाश्रय जो भगवान के शरणागत हैं, शरणागत हैं, शरणागत हैं, ऐसे हजार बार लगाइए। दास दासानु दास दास दासानु दास दास दासानु दास अन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णुवे नमः। वो लोग तुरंत शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए अपने चित्त को भगवान की चरण में, अगर नरक जाने से बचना है, नहीं तो अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरकेशु च। गीता 16वां अध्याय श्लोक संख्या भी 16 है। अनेक चित्त विभ्रांता जिनका चित्त चिंताओं से भ्रमित है, मोह जाल समावृता मोह जाल में फंसे हुए, प्रसक्ता काम भोगेशु कामनाएं जिनके मन में है, नरक नरकेशु च नरक जाते हैं। इसलिए भगवान का नाम। मुकुंदमाला सूत्र का एक श्लोक है। इदम शरीरम परिणाम पेशलम पतत्यवशम सतसंधि जर्जरम किम औषधम पृच्छसि मूढ़ दुर्मते निरामयम कृष्ण रसायनम पिव। मुकुंदमाला सूत्र किंग कुलशेखर। इदम शरीरम परिणाम पेशलम, ये शरीर बीमारियों का खजाना है, बदलता रहता है, परिवर्तनशील है। पतत्यवशम सतसंधि जर्जरम, इसमें परिवर्तन है, अभी बच्चे फिर जवान फिर बुढ़ापा ढांचा। किम औषधम, ये शरीर में रोग हो गया, दवाई डॉक्टर दवाई डॉक्टर। तो श्लोक में कहते किम औषधम पृच्छति, क्या दवाई पूछता रहता है। किम औषधम पृच्छति मूढ़ दुर्मते, अरे मूर्ख क्या दवाई दवाई डॉक्टर डॉक्टर लगा रखा है। इसे निरामयम कृष्ण रसायनम पियो, चुपचाप भगवान कृष्ण के नाम का रसायन पियो। और कृष्ण रसायन पीने से जन्म मृत्यु जरा व्याधि चार बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। जन्म भी नहीं होगा तो रोग कहां से होगा, और सीधे भगवान के धाम जाओ। निरामयम कृष्ण रसायनम पियो। शतांग प्रसंगा मम वीर संविदो भवंती हत कर्ण रसायन कथा तज्जोषणा दास वर्ग बत्मनी श्रद्धारतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति। भगवान के भक्तों का संग करो, कहा साधु संग सर्वशास्त्री कह लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। इसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सीताराम 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 कहिए, जेही विधि राखे राम तेही विधि रहिए। भगवान ने जिस स्थिति में रखा है, अब हमारे पिताजी 3 फुट के हैं तो हम 5 फुट का क्यों होना चाहते हैं भाई, क्या हम अपने बाप के औलाद नहीं हैं। अब आजकल गोलियां चली हैं, ये गोली खाओ लंबा हो, तो लंबा तो कोई हुआ नहीं, कई लोगों को पूछा था, लेकिन बिस्तर में लंबे जरूर हो गए। इसलिए भगवान ने जिस स्थिति में रखा है, गरीबी में रखा है मंजूर है, अमीर बना के रखा है मंजूर है, कुछ योगी समझा होगा इसलिए पैसा दिया, ढंग से खर्चा करूंगा। तो कोई एक व्यक्ति कुछ मेहनत नहीं करता, स्वतः सब लोग करोड़ों रुपए रोज कमा रहे हैं, और एक दिन भर गधे की तरह मेहनत करता है, दाल रोटी भी नहीं मिलती। भगवान भी देख के देते हैं ना। हमने अपने बेटे को 1000 रुपए दिया और हिसाब मांगा, बोलता क्या हिसाब, खर्चा कर दिया, ये कर दिया, कुछ मत पूछो, दोबारा दोगे? तो हम थोड़ा सा भगवान ने हमको कुछ दिया उसी का हिसाब ठीक ढंग से नहीं देते हैं, फिर बोलेंगे और अरे फिलहाल जो 100-200 रुपए दिया इसका हिसाब तो दो, तुमको 3 फुट का बनाया इसका हिसाब तो दे पहले, 5 फुट कैसे हो जाएगा? फिर 5 फुट का बनाया, बोलता और थोड़ा 1.5 फुट और होता ठीक रहता, तो बोले 5 फुट का हिसाब तो दो, 5 फुट में कितना उछले हो, कीर्तन में उछले हो या कहीं और उछले हो? तो भगवान हिसाब मांगते हैं, तो हिसाब तो देना पड़ेगा। जमाना चाहे बदल जाए, लोग कहते हैं समय खराब हो गया है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन सूरज आपने देखा अभी भी पूरब से ही उदय हो रहा है। तो समय अगर बदल गया तो पूरब सूरज पश्चिम से उदय होना चाहिए। तो फिलहाल कोई जमाना नहीं बदला है, सिर्फ हमारी खोपड़ी बदल गई है। इससे अपना कल्याण चाहते हैं तो महापुरुषों की वाणी, भक्तों की वाणी, सत्संग, सज्जन व्यक्ति, जो भी अच्छे आदमी हैं, यही हमको राह बताते हैं, ठीक ढंग से रहो, उछल कूद मत करो। भगवान ने जो भी हमको दिया है, जो भी योग्यता दी है, उसको भगवान की चरणों में समर्पित करो। समुद्र मंथन में वो छोटी गिलहरी आपने देखी होगी, उसके पीठ पर दो निशान हैं व्हाइट, तो ये गिलहरी भी सेवा कर रही थी। तो गिलहरी नल और नील पहाड़ उठा के लाते हैं, और ये गिलहरी छोटे छोटे मिट्टी के ढेले ले जाती हैं। भगवान ने उसके बदन पर हाथ फेराए, ऐसे उंगलियां, तो आज भी गिलहरी के शरीर पर निशान है, तो व्हाइट निशान है ना, वो राम जी के उंगलियों के निशान है। आशीर्वाद दिया, तुमने समुद्र पुल बांधने में बहुत मदद की है। तो भगवान की सेवा कोई कैसे भी करे, वर्तस्य पश्यति गुरु न पी ना पर आधान, सेवा मनाग भी कितंग बहुधा भी पेती, आविश करो तो पिशुने सुबिना बिशुयांग, शिले न निर्मलमति पुरुषोत्तमोयंग। कोई भी उनकी सेवा अच्छी तरह से कर दे, लेकिन भक्ति भाव से, पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो मे भक्ति आप प्रयच्छते, कंडीशन रख दियो। अभी भगवान को आपने 10 करोड़ रुपए दिया, ये लो, आपने दिया था दे दिया, लेते हैं पत्र पुष्प फल जल थोड़ा सा दे दो प्रेम से, मैं क्या दे सकता हूं आपको, मैं खुद ही भिखारी हूं। सिग्नल वाला भिखारी 1 रुपए मांगता है, हम ऐसे भिखारी हैं 1 लाख में भी संतुष्ट नहीं, तो बड़ा भिखारी बड़ा भाई साहब कौन हुआ? सिग्नल पर जो लोग भीख मांगते हैं हम उनको बोलते हैं भिखारी है, और उसको 10 रुपए दो आप किसी भिखारी को खुश हो जाता है। और एक भिखारी हम हैं, 1 लाख रुपए भी 1 घंटे में देंगे फिर भी खुश नहीं, और फिर हम सोचते हैं सिग्नल वाले भिखारी को मैंने 10 रुपए दिया, सुबह तुम कितना मांग के गया था भगवान से, बड़ा भिखारी तो तुम है ना। सब भिखारी, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, गाने वाला भी ऊपर चला गया, तो हम सब भिखारी गुलाम, भगवान मालिक है। और भगवान की संपत्ति का दुरुपयोग जो करता है, किसने किया संपत्ति का दुरुपयोग? रावण ने किया, जिन जिन ने किया सब, एक लख पूत सवा लख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। रावण के 10 सर, हमारे 10 है, एक उसके 20 हाथ, हमारे 2 हाथ, सोने की लंका हमारी ईंट की लंका, उसी में मस्त घूम रहे हैं इधर उधर।
जब वो नहीं, विचार करो, जब वो 10 सिर वाला रावण नहीं रहा, 20 हाथ वाला, हमें 2 हाथ वाले रहेंगे?
रावण हजारों टन शराब पी जाता था 3 के हिसाब से, वो भी प्योर स्वर्ग से देवता लोग बना के लाते थे। हम लोग एक कूड़े कचड़े की शराब पियेंगे हम रहेंगे? जब असली पीने वाला नहीं रहा तो नकली पीने वाला रहेगा? कौन रहेगा? विभीषण रहेगा जो शरणागत हुआ है। न तात की सोच, न मात की सोच, न सोच पिता सुरधाम गए की, बंधु बिछोह की सोच नहीं, नहीं सोच हमें वनवास भय की, सीता हरे कछु सोच नहीं, नहीं सोच जटायु के पंख कटे की, सोच तो बस एक यही तुलसी, कि लंक विभीषण बन गए की।
जब लक्ष्मण को मूर्छा हो गई तो बानरों के मध्य अर्ध रात्रि में भगवान विभीषण की चिंता करते, जबकि भाई बेहोश पड़ा है, उस अपनी जंगा पे सर रखा है उसका। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे, भगवान कहते हैं हमको किसी का सोच नहीं है, बस विभीषण का दुख मुझे सताता है, मैंने इसे लंकेश कह दिया था जब मेरे पास आया था, तो लगता है इसको लंकेश बना पाऊंगा कि नहीं। इसे शरणागत की रक्षा होगी, भक्त वत्सल की रक्षा होगी, भक्त वत्सल भगवान है तो जो शरणागत भक्त है उसकी रक्षा। भगवान अपने बेटे की रक्षा नहीं करते, अपने पिताजी की रक्षा नहीं करते, लेकिन जो शरणागत है उसकी रक्षा। राम जी चरणों में हनुमान जी को रखते हैं, भरत जी को रखा, शत्रुघ्न तो उनका भाई था उसको रख देते। हनुमान जी की पूजा होती है, राम लक्ष्मण सीता जी किसान हनुमान जी की उपासना होती है, भरत और शत्रुघ्न का फोटो किधर होती है, जो कि सगा भाई था उनका। इसलिए जैव धर्म में भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है, प्रीति और प्रेम में फर्क है। भगवान जिससे प्रेम करते हैं उसका सब हरण कर देते हैं, जिससे प्रीति करते हैं उसको सब कुछ दे देते हैं। तो भगवत कृपा से सब कुछ मिलता है संसार, लेकिन भगवान नहीं मिलते हैं। जब राजाभिषेक के बाद भगवान अयोध्या आए तो सब लोग आए, विभीषण आया, सुग्रीव आया, जामवंत आए, सब बानर सेना अयोध्या आई थी। कुछ बानर तो वहीं रह गए लड़ाई के बाद, वो जितने राक्षसों की पत्नियां थी उनसे शादी कर ली, बोले बहुत मेहनत किया इधर ही रहेंगे अभी, तो उधर श्रीलंका से उधर जितने लोग हैं सब वो बंदरों की औलाद है, ये लोग वापस नहीं आए वहां से। बोले बहुत मेहनत किया, लड़ाई लड़ी, काम हो गया अभी, तो भगवान ने कहा सब बिल्डिंग खाली पड़ी है इधर ही रहो, पूरी लंका खाली पड़ी थी, सब मर गए थे। तो कुछ लोग वापस आए और सबसे भगवान ने एक महीने बाद कहा जाओ जाओ अपने अपने घर पर जाओ। विभीषण से कहा इतनी बड़ी सोने की लंका, राजा हो वहां के, इधर बैठे बैठे क्या करोगे, राजपाट नहीं देखोगे, जाओ। लेकिन हनुमान जी से कहा हमारे पास रहो, क्योंकि हनुमान जी की गाढ़ी प्रीति है उन्हें। गिफ्ट बांटते वक्त भी भगवान ने किसी को बेशकीमती उपहार दिए, जब विदा कर रहे थे, जिसने जो मांगा जो इच्छा प्रकट की भगवान ने दिया। और सीता जी ने भी अपना एक सुंदर बेशकीमती हार हनुमान जी को दिया, और हनुमान जी उस हार को तोड़ने लगे। वाल्मीकि रामायण में उपाख्यान है ऐसा, तो कई वशिष्ठ आदि ऋषि मुनियों ने कहा देखो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, सीता माता का इतना कीमती हार, अरे बंदर इसका तोड़ ला इसका। अब किसी की हिम्मत नहीं पूछने की, फिर किसी ने हिम्मत करके पूछा इतना कीमती हार सीता माता ने तुमको दिया, तुम कितने भाग्यशाली हो, लेकिन तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम इसको तोड़ रहे हो, ऐसे इसकी सुंदरता को आप खराब कर रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हो उसमें। हनुमान जी तोड़ते जाते थे, देखते जाते थे, तो कहा क्या देख रहे हो इसमें, क्या देख रहे हो, क्या मिलेगा तुम, तो हनुमान जी ने कहा जिसमें सीताराम का दर्शन न हो वो वर्ष तो हमारे किसी काम की नहीं है। मैं इसलिए एक एक टुकड़ा तोड़ के देख रहा हूं इसमें सीताराम है कि नहीं। तो किसी ने व्यंग किया तो सीताराम तो तुम्हारे शरीर में भी नहीं है, फिर तुम्हारे शरीर के किसी भाग में अगर सीताराम न हो क्या तुम उस शरीर को तोड़ दोगे। हनुमान जी ने कहा मेरे रोम रोम में सीताराम समाये हैं, अगर जिस शरीर के बाल में भी अगर राम नहीं होंगे सीताराम वो बाल मेरे किसी काम का नहीं। तो कहा प्रमाण बताओ, तब प्रमाण बताया, अपनी छाती फाड़ के दिखाया। तो कहा जैसे ही सीताराम की मूर्ति वहां सिंहासन पर बसती है वही सिंहासन मेरे हृदय में विराजमान रहता है। इस हार में मैं यही देख रहा था, इसलिए प्रेम है भगवान के प्रति। फिर भी हनुमान जी की भक्ति दासी भाव में आती है। श्रवणम कीर्तनम विश्व स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम। हनुमान जी की भक्ति दासी भाव की, हनुमान जी नौकर हैं, और वैष्णव की भक्ति गोपी भाव की है, सखा भाव की है। हनुमान जी भगवान को कभी मक्खन देने के बहाने नचा सकते हैं, या मैं तुझे चीज दूंगा लाके नचा सकते हैं? नहीं, उनको नौकरी करना पड़ेगा गुलाम बन के। लेकिन भक्ति में हमारे वैष्णव संप्रदाय में गोपियां भगवान को छचिया भर छात पर नचाते। शेष महेश दिनेश जो भगवान की कथा को निरंतर गाते हैं, ऐसे भगवान को ब्रज की गोपियां छचियावर छांच पे नाच नचाती हैं। ये चैतन्य महाप्रभु का भाव है। तो हम लोग उस धारा में भजन करते हैं, वो भक्ति भाव, वो मार्ग हमारा है। तो बहुत उच्च कोटि का है, इसलिए हमें इस व्यवस्था का लाभ उठाना है। अगर इतने पे भी देखो, प्रहलाद महाराज को भगवान कहते हैं मैं तुम्हारी 21 पीढ़ी का उद्धार कर दूंगा, 21 पीढ़ी का न भी हो 10 पीढ़ी का तो करो 50%, 1/4 का कोटा तो रखो, कोटा है ना, मैं इतना कलेक्शन करूंगा ऐसा कोटा है, कितनी पीढ़ी का उद्धार करूंगा ये भी तो कोटा होना चाहिए। मैं अपने भजन के द्वारा 21 पीढ़ी का नहीं 10.5 पीढ़ी का उद्धार करूंगा, 5.25 पे आओ, फिर 10% में आओ नीचे, तो कम से कम अपना तो करो 1%। तो इतना भजन तो हमको करना पड़ेगा। जब प्रभुपाद जी की शरण में आए हैं चैतन्य महाप्रभु की, तो एक तो 28 तरह के नरकों में जाने से बचना है, भले दूसरे को भेज दें हम तो ना जाएं। तो इतना कल्याण हमको इस जीवन में कैसे भी इन किन प्रकार करना है। 21 पीढ़ी करना भी हो 20 को हटा दो, खाली एक रखो, तो अपना कल्याण जरूर होना चाहिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभु पदा जय प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा
ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। कोई भी प्रश्न पूछना हो या फिर प्रसाद महल में पूछ लेना माता हूं।